So my Pakka translator has arrived. Yes, I just introduce Bharti Shetty. She wasn't able to come yesterday.
तो मैं भारती शेट्टी का परिचय करके देना चाहूंगा. वो कल आ नहीं पाई थी.
And she can translate into any Indian language.
और वो किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद कर सकती है.
So you can translate into Gond.
Gond? Yes, a little bit. My mother is from that community. तर वो पूछ रहे कि गोंड में आप ट्रांसलेट कर सकती हो क्या? मैं ला थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी माँ है.
Maybe not necessary.
तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.
And I'd like to welcome the students from Shaolin Training.
तो शाओलिन ट्रेनिंग के जो विद्यार्थी यहाँ हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ.
You'll see just along the valley there's a new building.
तो आते हुए शायद आपने देखा होगा खाई के पास वहाँ एक नई इमारत बन रही है.
And there are how many students are you about?
30
students doing a 6-month course in Shaolin Karate, Kung Fu and Dhamma.
तो लगभग 30
1 year.
30 विद्यार्थी वहाँ पर एक साल का शाओलिन कराटे कुंफू का वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
So we're very glad that they can at least come this morning.
तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज की सवेरे वो यहाँ उपस्थित हो सके हैं.
Yes. So last night I asked you to do some homework.
तो कल रात को मैंने आपको कुछ गृह कार्य करने के लिए कहा था.
I don't know whether any of you managed to do it.
तो मुझे पता नहीं आपने वो किया या नहीं.
I won't be correcting your homework.
तो मैं कुछ वो करेक्ट नहीं करने वाला हूँ, देखने वाला नहीं हूँ.
I'll leave it up to you.
मैं वो आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ.
But I was asking you to try to keep track of the influences on your own mind.
लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके मन पे, इसके बारे में आप जागरूक रहिए.
To try to watch the conditions which affect the way your mind is.
और ऐसी परिस्थितियों का निरीक्षण कीजिए कि जिसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है.
So I don't know what you found, what you noticed.
तो मुझे नहीं पता आपको क्या पता चला, आपके क्या ध्यान में आया.
But you'll find there's quite a large range of influences.
लेकिन आप देख पाओगे कि बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है.
One's mind is affected by all the conditions around one.
और अपने इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हैं उसका अगर अपने मन पर प्रभाव पड़ता है.
It's affected also by internal conditions, you could say.
तो अपने अंदर की जो परिस्थितियां हैं उसका भी अपने मन पर प्रभाव पड़ता है.
So yes, we're studying the conditions that affect our minds.
तो हम उन सब परिस्थितियों का अभ्यास कर रहे हैं जिसका अपने मन पर प्रभाव पड़ता है.
Because if we know the conditions that produce greater excellence, well then we can try to bring those about.
तो अगर हम ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास कर सके कि जिसके वजह से हम उच्चतम कुछ तो प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं.
Buddhas don't just happen.
तो बुद्ध कुछ ऐसे ही नहीं बनते.
It's not a question of chance.
और ऐसे ही चांस से वो नहीं बनते, मतलब ऐसे ही नहीं बन जाते.
It's not a question of some intervention from above.
और ऊपर से कुछ शक्ति भी उन्हें ऐसा नहीं बनाती.
You know that some people say that the Buddha is incarnation of Vishnu.
अब आपको पता होगा कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु का अवतार है.
Well, that may be their point of view. They're entitled to their point of view.
तो ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है और वो अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं.
But that's not the Buddhist point of view.
लेकिन ये बौद्ध दृष्टिकोण नहीं है.
The Buddha arises in dependence on conditions which we can study.
तो बुद्धत्व की प्राप्ति जो है परिस्थितियों पर आधारित होती है और इन परिस्थितियों का हम अभ्यास कर सकते हैं.
We can understand those conditions and then create them for ourselves.
ऐसी परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं और ऐसी परिस्थितियां हम खुद के लिए निर्माण कर सकते हैं.
So that's why we're looking at the conditions that affect our own minds.
और इसीलिए हम इन परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं जिनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है.
So yes, I can imagine that if you are looking at the conditions that affected your mental state, you'd have found a range of different influences.
तो अगर आपने देखा होगा उन परिस्थितियों का जिसका आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो अनेक परिस्थितियां आपके ध्यान में आई होगी.
So for instance, you might have been affected by the cold.
तो उदाहरण के तौर पे सर्दी का आपके ऊपर कुछ असर पड़ा होगा.
I feel very much at home here at the moment. It feels just like England.
तो यहाँ तो मुझे एकदम घर जैसा लगता है, जैसे इंग्लैंड का ही वातावरण.
It's quite mild and pleasant temperature for me.
तो बहुत ही हल्का और सुखद ऐसा ये मेरे लिए तापमान है.
But I imagine a number of you will find it too cold at night.
लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को रात में बहुत सर्दी लगी होगी.
And that will have affected your body.
और उसका आपके शरीर पर प्रभाव पड़ा होगा.
So you will have been affected by physical conditions.
तो आप सबके ऊपर ये जो परिस्थितियाँ इसका प्रभाव पड़ता है.
They will have maybe made you know the temperature of your body go low. You may have shivered.
आपके शरीर का तापमान कम हुआ रहेगा, आपको हुड़हुड़ी लगी रहेगी, आपने उसे देखा होगा.
So yes, physical conditions affect even our state of mind.
तो ये जो बाह्य परिस्थितियां हैं, इसका अपने मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है.
If you're cold, it's more difficult to be aware.
अगर आपको सर्दी लग रही है तो जागृति रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है.
You may be shivering too much.
तो आपको ऐसे हुड़हुड़ी लग रही होगी बहुत.
Then, of course, you'll have been affected by physiological matters, even biological matters.
तो जो मनोवैज्ञानिक चीजें हैं और जो जैविक चीजें हैं, इनका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है.
You might have had a cold, for instance, a virus. Hmm?
जैसे किसी वायरस से आपको सर्दी हुई होगी.
And that will have affected your mind. Hmm?
और उसका भी आपके मन पर प्रभाव पड़ा होगा.
If you've got any illness, you feel a little dull.
अगर आपको कोई बीमारी होती है तो आप थोड़ा सा बुझा हुआ महसूस करते हैं.
You find it more difficult to be sharp and clear.
और बहुत आप सुस्पष्ट नहीं रह सकते उस वक्त.
But it's not really in your hands directly.
लेकिन ये कुछ डायरेक्ट सीधा आपके हाथ में नहीं होता
नियंत्रण. You can't affect, you can't stop it from being cold.
तो सर्दी पड़ने से आप उसको रोक नहीं सकते.
You can't, well, completely, it's not in your control to stop yourself getting a virus.
और आपको किसी वायरस से इन्फेक्शन हो, इसको भी आप रोक नहीं सकते.
So you're affected by these things beyond your control.
तो आप के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है और इसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होता.
Well, of course, you can make sure you're wrapped warmly.
तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप कुछ तो भी अच्छा गर्म पहना हो.
You can avoid situations where people have colds.
और ऐसे लोगों के संपर्क में आना टाल सकते हैं जिन्हें सर्दी हो.
But in the end, physical and biological conditions affect us directly.
लेकिन अंत में ये जो भौतिक और जैविक स्थितियां रहती है, इनका हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है.
Then you'll have found that, for instance, towards evening, towards night, you became sleepy.
और आपको ध्यान आएगा कि जैसे संध्या काल आता है तो आपको नींद आना शुरू हो जाता है.
And your mind was not really able to think so clearly.
और आपका मन उतना स्पष्ट तरीके से सोच नहीं पाता है.
So the mind is also a sort of mechanism, you could say.
तो मन भी है एक प्रकार की कार्य प्रणाली है, ऐसा आप कह सकते हैं.
You know, if you work very hard, your mind feels tired.
तो अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है.
I was talking with Sam this morning over breakfast.
तो नाश्ता करते वक्त मैं सैम से बात कर रहा था.
And I've worked him really hard over the last weeks.
और पिछले एक हफ्ते में मैंने उनसे बहुत काम कराया है.
And yesterday he said he just couldn't sort of do any more.
और कल उन्होंने मुझे बताया कि बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता.
He's all right now. He's back on.
अब वो ठीक है और वापस उनकी ऊर्जा आ गई है.
I gave him half an hour off and he's okay now.
तो मैंने उनको आधे घंटे की छुट्टी दे दी और अब वो ठीक है.
I'm joking, don't worry.
तो मैं मजाक कर रहा हूँ.
It was only quarter of an hour.
तो मैंने सिर्फ आधे घंटे का भी आधा समय उनको छुट्टी दी.
But yes, if you work really hard, there's a sort of point where your mind can't do any more.
तो इस तरीके का अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपका मन बिल्कुल कार्य ही नहीं करता.
It's not a matter of will, it's a matter of what the mechanism can do.
तो आपकी इच्छा के ऊपर ये निर्भर नहीं रहता है, लेकिन इस कार्य प्रणाली की जो शक्ति है उस पर निर्भर है.
If you didn't sleep last night, you'll have found it very difficult to meditate this morning.
तो अगर आपकी रात में अच्छी नींद नहीं हुई होगी तो सुबह ध्यान करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा.
So all of these factors play upon us.
तो इन सब चीजों का हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है.
In early Buddhism, these were categorized, these forces.
तो शुरुआत का जो बौद्ध धर्म है तो इन शक्तियों का उन्होंने वर्गीकरण किया था.
It was said there were five different kinds of conditioning that affect us.
तो ऐसा कहा गया था कि पांच विभिन्न प्रकार के परिस्थितियां या संस्कार होते हैं जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है.
In fact, five different kinds of conditioning that are at work all around.
और ये पांच विभिन्न परिस्थितियां रहती है जो हर तरफ कार्य करती है.
There's first of all, uttu niyama.
तो पहला जो रहता है वो रुत्तु नियम है.
उत्तु इन पाली, रुत्तु इन संस्कृत.
तो उत्तु जो है वो पाली में है और रुत्तु जो है वो संस्कृत में है.
Those of you who know Dr. Babasaheb Ambedkar's The Buddha and His Dhamma will see these mentioned there.
तो आप में से जो बाबा साहब के भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को जानते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है.
So yes, first of all there's उत्तु नियम.
तो पहला जो है वो उत्तु नियम है.
So that's all the laws, all the conditioned regularities that we find under the heading of physics, of chemistry and so on.
तो भौतिक शास्त्र के अंतर्गत जो भी नियम होते हैं, जो भी परिस्थितियां होती है, वो इसके अंतर्गत आती है.
The laws like the law of gravity,
जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम.
The laws of thermodynamics, I suppose,
या थर्मोडायनामिक्स का जो नियम है.
All of those are at work in the universe around us.
तो हमारे इर्द-गिर्द जो विश्व है उसमें ये सब कार्यरत होता है.
And all of those affect us.
और इन सब का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है.
Then, of course, we are affected, and the world is affected by biological or botanical laws.
और हम ऐसे विश्व से भी प्रभावित होते हैं जो विश्व जो है जीव शास्त्र से बना हुआ है.
This is बीज नियम.
और इसे हम बीज नियम कहते हैं.
So बीज नियम is the heading for a whole mass of different laws that govern living organisms.
तो जो भी जीवित प्राणी है उन सब के ऊपर नियंत्रण करने वाला ये एक शास्त्र है.
Well, they don't govern them, of course, but the living organisms demonstrate those conditions.
तो उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सभी जीवित प्राणी जो है इन नियमों को दर्शाते हैं.
So the clearest example is photosynthesis.
तो जैसे कि photosynthesis, I don't know Marathi word, Hindi word. Photosynthesis? Prakash?
Anyway, yeah. I should think anybody who knows what photosynthesis is will know it in English. But it's the law that, or rather the way in which plants transform light into chlorophyll, isn't it? And then into the stuff that they need to survive.
तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ जो है सूरज की ऊर्जा को क्लोरोफिल में परिवर्तन करते हैं और उनके जीने के लिए जो भी उनको अन्न की जरूरत होती है उसका निर्माण करते हैं.
So living organisms depend upon certain biological laws.
तो जो ये जीवित जो भी प्राणी है ऐसे जैविक नियमों के ऊपर ही आधारित होते हैं.
Those are at work in us.
और ये सब नियम हमारे अंदर कार्यरत हैं.
Our bodies are living organisms.
क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक जीवित ये है प्राणी है.
Then there's मनोनियम.
उसके बाद मनोनियम होते हैं.
This is a little bit more difficult to get completely clear.
तो इसको पूरी तरह से समझना थोड़ा सा मुश्किल है.
It's really to do with the mind, but at the animal level.
तो इसका जो संबंध रहता है वो मन से है लेकिन प्राणियों के स्तर पर.
If you like, the instinctive mind.
तो जैसे अंतःप्रेरणा वाला एक जो मन होता है.
So the mind that translates visual images, sorry, translates light into visual images.
तो ऐसा जैसे प्रकाश जो है आप जो चीज को देखते हैं तो प्रकाश उस चीज के चित्र में उसको रूपांतरित करता है.
That is मनोनियम.
तो इसे मनोनियम कहते हैं.
But it also includes very very complex instinctive behavior.
लेकिन बहुत सारे जटिल ऐसे अंतःप्रेरणाओं भी उसमें आती हैं.
I haven't seen them here this year, but usually you get here the nests of the weaver bird.
हाँ, तो इस साल तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा लेकिन यहाँ पे जो सुतार पक्षी रहता है उसका घोंसला होता है.
I don't know whether you've seen those nests.
तो आपने इसे देखा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं. शिंपी पक्षी.
Extremely elaborate.
तो बहुत ही वो सुंदर ऐसा होता है.
You get the main nest, which is a sort of basket.
तो उनका एक जो मुख्य घोंसला होता है जो कि एक टोपली के जैसा होता है.
And then there's a long tube coming off it.
और फिर एक नली होती है उसमें से बाहर निकलती है.
And if you examine them, they're beautifully made.
और अगर आप फिर उनको देखें तो बहुत ही सुंदरता से वो बुना हुआ होता है.
Well, yes, we call them weaver bird in English.
और हाँ, English में भी.
Same, yeah. No.
English. Koshti Pakshi, Marathit Manto Apan, and English Made Weaver Bird. Weaver Bird. Sugran. Sugran.
So that, and they do. They weave the grasses into the sort of basket of their nest.
अनि ते और वो ऐसा करते हैं वो जो घास रहती है उसको वो अपने घोंसले के आकार में लेके आते हैं.
It's quite extraordinary that you know every weaver bird builds a nest like that.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हर पक्षी जो है उसी तरह से वो घोंसला बुनता है.
One of the things I find really interesting is they know exactly how to get in.
और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इन्हें कैसे पता होता है कि अंदर कैसे जाना है.
They know exactly how to fly up into the tube, yeah?
उन्हें पता होता है कि वहां से अंदर जाके उनके जो घोंसले में वहां किस तरह से उड़के जाना है.
When you think about it, a bird flies with wings.
तो जैसे आप सोचोगे कि पक्षी जो है अपना पंख फैला के उड़ता है.
So they have to give enough momentum to get up the tube without coming out the top of the basket.
तो उन्हें एक पर्याप्त मात्रा में शक्ति लगानी पड़ती है ताकि वो जो है वहां तक पहुंच सके उनके घोंसले.
They don't think to themselves, I think I need a nest.
तो वो कुछ ऐसा सोचते नहीं कि हाँ मुझे अब घोंसले की जरूरत है.
What sort of nest shall I make?
और किस तरीके का घोंसला मैं बनाऊं?
And they don't think to themselves, how am I going to get in there?
और ये भी नहीं सोचते कि मैं फिर अंदर कैसे जाऊंगा?
They just do it.
वो सिर्फ कर देते हैं, बना लेते हैं.
It's a very complex set of conditions in which there's no intentionality.
और ये बहुत ही जटिल ऐसे परिस्थितियों का मिश्रण है जहाँ पे कोई भी उद्देश्य नहीं होता है.
They just do it.
वो सिर्फ कर लेते हैं.
I often tell the story that I live in the mountains in the west of the United Kingdom.
तो मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ कि पाश्चित देश में एक पहाड़ के पास में रहता हूँ.
In Wales, if any of you know.
और अगर आपने नाम सुना हो तो मैं वेल्स में रहता हूँ.
And the streams going past where I live.
और वहाँ से झरना?
Streams, little rivers.
हाँ, तो छोटे-छोटे जो झरने हैं वहाँ से बहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ.
And every year, up those streams, there go eels. Eels, like a fish without, it looks like a snake, but it's a fish without legs.
और हर साल उस झरने में से eels नाम के जो एक तरह की मछली होती है. लेकिन वो लंबी सांप की तरह होती है वहां से वो तैरती है.
You get them in India. What's the name?
Wam.
In Marathi, no doubt. Yeah.
तो वाम मछली रहती है और वो वहां तैरती है.
And they wriggle up the stream.
और वो झरने में से ऊपर की तरफ तैरती है.
When they get into the mountains, they find a pool and they spawn, they lay their eggs.
और जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचती है तो वहां पे तालाब के जैसा कुंड देखती है और वहां पर वो अंडे देती है.
Then they go down the stream and they go across the Atlantic Ocean to the Sargasso Sea, which is in the Caribbean area.
और फिर वो वापस तैरकर नीचे आती है और फिर अटलांटिक ओशियन में और सरगोसा जो समुद्र है वहां तक वो तैरकर चली जाती है.
And then the next year they come back.
और फिर अगले साल वो वापस आती है.
And apparently many of them come back to the same streams.
और उसमें से कई जो मछलियां रहती है उसी झरने में से वो वापस तैरती हुई आती है.
They have no GPS.
तो उनके पास कोई GPS नहीं होता है.
They don't have a mobile phone.
कोई मोबाइल फोन नहीं होता.
I'm lost in the Atlantic Ocean. Can you tell me the way to Wales?
कि मैं अटलांटिक समुद्र में खो गई हूँ और वहां कैसे आना है रास्ता बता सकते हो?
They don't have a map.
उनके पास कोई मैप नकाशा नहीं होता है नक्शा.
They don't think about what they're doing, as far as we know.
और वो क्या कर रही हैं इसके बारे में भी वो सोचती नहीं जहाँ तक हमें मालूम है.
But they find their way backwards and forwards.
और लेकिन आगे और पीछे वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है.
So it's quite instinctually.
तो ये अंत प्रेरणा से हो जाता है.
Without any self-awareness, as far as we know.
इसमें कोई भी स्व जागृति नहीं होती जहां तक कि हमें मालूम है.
And of course there are even more wonderful phenomena of that kind.
और इस तरीके के कई अद्भुत जो है प्रक्रिया हम देख सकते हैं.
So, well, yes, there's a level of conditionality that's going on around us with the birds, with the animals, with the insects.
तो ऐसा एक स्तर है परिस्थितियों का, संस्कारों का, जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा चलता रहता है, पक्षियों में, प्राणियों में.
I remember a couple of years ago, a doctor, where is he, was had some brought some snakes on retreat.
तो मुझे याद है कुछ साल के पहले एक डॉक्टर थे और वो शिविर में सांप लेकर आए थे.
Snakes needed a retreat as well.
तो सांपों को भी शिविर की आवश्यकता होती है.
And I remember he brought a cobra.
और मुझे याद है कि वो कोबरा लेकर आए थे.
Some people were not very happy about this.
और कुछ लोगों को इससे आनंद नहीं हुआ था.
And he was working with the cobra.
और वो कोबरा के साथ काम कर रहे थे कुछ.
And he was making the cobra come up and show its hood.
और वो कोबरा को बता रहे थे कि अपना सिर ऊपर लेके आओ, अपना फन दिखाओ.
What was clear was that you understood the instincts of the cobra.
तो एक बात स्पष्ट थी कि कोबरा की जो अंत प्रेरणाएं जो थी उसको आप समझ पा रहे थे.
And therefore you could work with the cobra.
और इसीलिए आप उनके साथ कार्य कर पा रहे थे.
I remember you distracting the cobra and then leaning forward and taking it by the tail.
तो मुझे याद है कि आप कोबरा का ध्यान भटका रहे थे और फिर उसकी पूंछ पकड़कर उठा रहे थे.
I had to put my hands over my eyes.
और मैंने ऐसा अपना आंख बंद कर ली थी हाथ से.
But because you understood the conditioning of the snake, you could work with it.
तो क्योंकि आप कोबरा के संस्कारों को समझ पा रहे थे इसलिए आप उसके साथ कार्य कर पा रहे थे.
Of course, if the snake had thought to itself, what's he playing at?
हाँ, लेकिन अगर सांप खुद ये सोच पाता था कि ये क्या करने जा रहा है.
He thinks he knows what I'm up to.
इसको लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ इसको पता है.
I'm going to give him a surprise.
लेकिन मैं इसको अभी चकमा देने वाला हूँ.
He wouldn't be here now.
और ऐसा होता तो आज वो यहाँ नहीं बैठे होते.
But because the snake is conditioned by this manoniyama kind of conditioning, you could work with him.
लेकिन ये मनोनियम के जो संस्कार उस सांप के ऊपर हुए थे उसकी वजह से आप उसको प्रशिक्षित कर पाते हैं.
Well, human beings can be very like that.
तो मनुष्य भी इसी तरह से हो सकते हैं.
We also are conditioned by that sort of manoniyama conditioning.
हम सभी के ऊपर इन मनोनियमों के कुछ न कुछ संस्कार होते हैं.
We've got instincts.
हमारी भी अंत प्रेरणाएं होती
है. We've got reflexes.
हमारे
reflexes.
हाँ, हम भी चीजों को अपने तरीके से प्रतिसाद देते हैं.
You know, if you bang the knee, the foot kicks.
तो जैसे अगर आपके पैर किसी चीज से टकराता है तो आपका पैर भी उस चीज को धक्का देता है.
If a bright light is shone in your eyes, you move your head away.
अगर तेज किरणें प्रकाश की आपके आंखों पे पड़ती है तो आप अपना सर घुमा लेते हैं.
And well, there are more complex social kinds of conditioning that affect us too.
और बहुत सी जटिल सामाजिक संस्कार भी हमारे ऊपर होता है जिससे हम प्रभावित होते हैं.
For instance, we have a strong instinct to be accepted.
तो एक हमारी अंत प्रेरणा होती है कि हमें लगता है कि हमें स्वीकृति मिलनी चाहिए.
We want other people's approval.
हमें लगता है कि दूसरे लोगों ने हमें स्वीकार करना चाहिए.
Because we're basically we're monkeys.
क्योंकि मूलतः हम सब बंदर हैं.
If you watch the monkeys in the forest, well, it's all a lot of tension around belonging to the group, belonging to the pack.
तो अगर आप बंदरों को देखते हो तो देखोगे कि उनमें एक तरह का तनाव होता है और वो हमेशा अपने झुंड के साथ बने रहना चाहते हैं.
बरोबर. We're like that.
तो हम ऐसे ही होते हैं.
We've got that level of conditioning in us too.
तो इस तरीके का संस्कार का एक स्तर हमारे अंदर भी होता है.
And probably to a greater extent than we would like to admit.
और हम जितना मानना चाहे उससे भी इसका स्तर ज्यादा होता है.
If you were all shouting at me and waving your fists, I'd feel very differently now.
तो अगर तुम आप सब लोग चिल्ला रहे हो और अपना ऐसे मुक्का मेरी तरफ करके इशारा कर रहे हो तो मुझे इस वक्त बहुत ही अलग भावनाएं निर्मित.
If you were all shouting boo, 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 I don't know how I'd feel. Well, I do know how I'd feel.
अगर आप सब लोग बू 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 इस तरह से चिल्ला रहे तो मुझे नहीं पता मुझे कैसा लगेगा. शायद पता है कैसा लगेगा.
we have that level of conditioning in us.
तो संस्कारों का एक स्तर हमारे अंदर भी होता है.
So these three kinds of conditioning are fairly familiar to us.
तो ये तीन प्रकार के जो संस्कार हैं इनसे हम सब वाकिफ हैं.
We're used to knowing that physical matter is governed by the laws of physics and chemistry.
तो हमें सब मालूम है कि भौतिक जो भी चीजें हैं तो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के नियमों के ऊपर आधारित है, कार्यरत है.
We're used to recognizing that trees and plants and bodies are governed by biological laws, but
और हमें ये भी पता है कि पेड़ है, प्राणी है, शरीर है, ये भी जीव शास्त्र के नियमों के ऊपर कार्यरत है.
We're used to recognizing that the mind is to some extent a mechanism.
और हमें ये भी पता है कि मन जो है एक प्रकार से कार्य प्रणाली है.
This is the sort of thing you study in animal psychology and in, if you like, what you could call lower psychology.
तो अगर आप प्राणियों का मनोविज्ञान या निम्न स्तर का मनोविज्ञान इसका अभ्यास करते हैं तो ये आप पता लगा सकते हैं.
But we're also acted on by other forces.
लेकिन दूसरी भी कुछ ताकतें हैं जो हमारे ऊपर कार्य करती हैं.
And these are the forces, or rather we operate with other forces.
तो ये जो ताकत होती है इनका अलग ताकतों के साथ मेल करके हम इसका उपयोग करते रहते हैं.
And these forces are the ones that we're trying to harness during these days.
और ये वो सारी ताकतें हैं जो इन समय हम इकट्ठा करने की या उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं.
There are kinds of conditioning that can lead to excellence.
तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, संस्कार होते हैं, जिसके वजह से हम उच्च स्तर की तरफ मार्गक्रमण करते हैं.
And it's these that we're trying to work with.
और यही परिस्थितियां हैं जिसके साथ हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं.
The laws of physics, the laws of biology, even of lower psychology, don't lead to excellence in this sense.
तो भौतिक शास्त्र के नियम, जीव शास्त्र के नियम या निम्न स्तर के मनोविज्ञान के नियम जो है इस तरह की ऊंचाई की तरफ हमें नहीं लेकर जाते.
There may be an evolution, but it's an evolution of species, not of individuals.
तो एक तरह से उत्क्रांति यहाँ पर होती है, लेकिन प्रजातियों की उत्क्रांति होती है, व्यक्ति की उत्क्रांति वहाँ पर नहीं होती.
But with these kinds of conditioning that we're going to look at now, they can lead to individual growth and excellence.
लेकिन अभी जो परिस्थितियां हम देखने जा रहे हैं वो ऐसी हैं जो एक व्यक्ति करके हमारी उत्क्रांति कर सकता है.
So we've got two categories.
तो हमारे पास दो वर्ग हैं.
The first is the category of karma niyama.
तो एक वर्ग जो है वो कर्म नियम का है.
And the second is dhamma niyama.
और दूसरा धम्म नियम का है.
And it's these that we are trying to bring into play during these days.
और यही है जो इन आने वाले दिनों में हम इनका उपयोग करना चाह रहे हैं.
When we meditate, we're using karma and dhamma niyama.
तो जब हम ध्यान करते हैं तो कर्म और धम्म नियम हम उपयोग में लाते हैं.
Even in investigating this view, we're trying to exercise karma and dhamma niyama.
तो जब हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं इस दृष्टिकोण के बारे में, तभी भी हम कर्म और धम्म नियम का प्रयोग कर रहे हैं.
In looking at the ideas that we've got, well, we're exercising karma niyama.
तो हमारे जो भी विचार है तभी भी हम उसकी तरफ देखते हुए भी हम कर्म नियमों को उपयोग में ला रहे हैं.
So let's look at them in turn.
तो एक एक करके उन्हें देखते हैं.
Karma niyama is the kind of conditioning that comes into play when you are self-aware.
तो कर्म नियम जो है एक प्रकार का ऐसा संस्कार या परिस्थिति है जो उपयोग में आती है
when you're self-aware.
जब आप स्व खुद के प्रति जागरूक होते हैं.
The what was it? Worm, the eel.
Worm.
Worm, not worm. Worm.
Worm.
Worm. The worm, the eel, doesn't know what it's doing.
तर वो जो वाम मछली है वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है.
It's just a bundle of instincts, you could say.
उनकी एक अंतःप्रेरणा का उनके पास एक ये होता है.
If you stop the worm and ask it, what are you doing?
तो अगर आप वाम को रोकते हो और पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो?
Well, it would just carry on swimming.
तो वो सिर्फ अपना तैरना जारी रखेगी.
It's got no capacity, apparently, to reflect back on itself.
क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं होती कि हमने क्या कहा है उसको वो प्रतिसाद दे.
And as far as we know, that's true of the whole animal kingdom.
और जहाँ तक हम जानते हैं कि ये जो है सभी प्राणियों के ऊपर लागू होता है.
Some researchers claim that some chimpanzees are able to identify themselves.
तो कुछ संशोधन ऐसा कहते हैं कि कुछ चिंपैंजी जो है वो खुद को पहचान पाते हैं.
Apparently, one chimpanzee has learnt to use a symbol vocabulary of 300 elements.
तो एक चिंपैंजी ऐसा है जिन्होंने एक शब्द समूह 300 शब्दों का एक समूह याद कर लिया है.
And is able to say, I want a banana.
और वो ये भी कह पाता है कि मुझे केला चाहिए
which is pretty advanced, really.
और ये काफी मतलब उनके लिए प्रगत है
because it involves recognizing I as distinct.
क्योंकि यहाँ पे मैं खुद किसी चीज से अलग हूँ ये पहचानना जरूरी है
and some people argue that dolphins, elephants and crows are capable of symbol manipulation.
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉल्फिन हाथी एंड
crows.
कौवे जो है वो भी ऐसे खुद को पहचान पाते हैं
But it's very, very minimal.
लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में है
But from a fairly early age, a child begins to recognize itself.
लेकिन बहुत ही छोटा बालक जो है बहुत ही कम उम्र से ही अपने आप को पहचानना शुरू करता
है It's one of the wonders of seeing children grow up.
और ये बहुत ही आश्चर्य की बात होती है बच्चों को बड़ा होते हुए देखना
You see them fairly quickly become self-aware.
आप देख पाते हो कि कितना जल्द वो खुद के प्रति जागरूक हो जाते हैं
And you see that self-awareness becoming more sophisticated, more complex.
और आप देखते हो कि ये स्व जागृति फिर उनकी और प्रगत हो जाती है और कॉम्प्लेक्स जटिल हो जाती है
एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर यू कैन स्टेप असाइड फ्रॉम द फ्लो ऑफ थिंग्स
और जब आप स्व के प्रति जागरूक होते हैं तो बाकी चीजें जिस प्रवाह में है उनसे आप खुद को अलग कर सकते हैं
यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ इन द फ्यूचर
आप खुद को भविष्य में सोच पाते हो
यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ इन द पास्ट
और आप खुद को भूतकाल में भी सोच पाते हो
यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ इवन बीइंग डिफरेंट इन द प्रेजेंट
और आप ये भी सोच पाते हो कि वर्तमान में अभी मैं अलग हूँ
सो दिस मीन्स दैट विद सेल्फ अवेयरनेस यू कैन स्टेप आउट ऑफ द इंस्टिंक्टिव कंडीशनिंग
और इसका मतलब ये होता है कि स्व जागृति के साथ आप जो है एक प्रकार का जो प्रवाह होता है उससे आप खुद को अलग रख पाते हो
वी कैन मेक चॉइसेस
हम अपने लिए निर्णय ले सकते हैं
वी कैन मेक डिसीजंस
हम निर्णय ले सकते हैं
Obviously, it's limited.
और बहुत ही कम मात्रा में हो सकते हैं.
You can't just decide to suddenly be something completely different.
तो आप अचानक से ये तय नहीं कर सकते कि मैं अभी अलग ही कुछ तो बन जाऊंगा.
But within the conditions that presently confront you, you can make decisions to act this way or that way.
लेकिन अभी जिन परिस्थितियों का आपके साथ सामना हुआ है, तो आप चुनाव कर सकते हो कि मैं कैसा बर्ताव करूंगा, ऐसा या ऐसा।
So because we're self-aware, we've got the possibility of choice.
क्योंकि हम स्वजागृति है, इसलिए चुनाव करने की जो है शक्यताएं हमारे लिए होती है।
What then happens is that you make choices which affect, of course, what you do.
और फिर तब क्या होता है आप ऐसे चुनाव करते हैं जिसका आप क्या कर रहे हो इस पे प्रभाव पड़ता
है affect the world around you,
आपके इर्द गिर्द जो विश्व है उस पे इसका प्रभाव पड़ता है
but they affect you.
लेकिन उसका आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ता
they affect the way in which your own mind, develops.
और इसका आपका खुद का मन किस तरह से विकसित हो रहा है इस पे भी उसका प्रभाव पड़ता है
our own actions constantly modify our own experience.
तो हमारी जो कृतियां हैं निरंतर हमारे अनुभवों में बदलाव लाती रहती
है And in Buddhism, karma, action, means action of the body.
और बौद्ध धर्म में कर्म मतलब शरीर द्वारा की गई कृति
It means action of the speech, of a voice.
इसका मतलब होता है कि वाचा द्वारा की गई कृति
But it includes action of the mind.
लेकिन मन के द्वारा की गई कृति का भी उसमें समावेश होता है
You can have very strong thoughts, very strong feelings, even if you don't act on them.
तो आपके बहुत ही पक्के ऐसे विचार हो सकते हैं भले ही आप उसके ऊपर कार्य नहीं करते
And all of these modify you.
और ये सब जो है आपके अंदर बदलाव लाते रहते हैं
So we're constantly molding ourselves, huh?
और हम निरंतर अपने आप को एक आकार दे रहे हैं
That the image that's often given in the Buddhist context is of a potter with a clay on a wheel.
तो बौद्ध संदर्भ में एक उदाहरण हमेशा दिया जाता है जैसे कुम्हार है और वो अपने चक्के पर मटका बना रहा है
You know, the potter puts the clay on the wheel and turns the wheel.
तो आपको मालूम है कि जो कुमार होता है वो अपने चक्के पर मिट्टी का ढेला डाल देता है और चक्का घुमाने
I've done this myself.
और मैंने ये खुद भी किया है.
It turned out rather like my chapati.
तो वो उसकी मेरी चपाती बन गई थी.
Wasn't a map of Australia, but.
तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ नकाशा नहीं बना था.
Anyway, the potter turns the clay and then he molds it with his fingers.
तो वो कुम्हार जो रहता है वो चक्का घुमाता है मिट्टी को और अपनी उंगलियों से उसे आकार देता है.
And the pot that emerges is emerges out of his mind, you could say.
और वो जो मटका बनता है, वो जो आकार तैयार होता है, वो उसके मन के अंदर से आता है.
And you can see, can't you? Sometimes people are very, very skilled at this and can make something really beautiful.
और आप देखते हो कि कभी-कभी लोग बहुत ही कुशलता उनमें होती है और इस तरीके की सुंदर वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं.
When I do it, it just looks worse than the lump of clay.
तो जब मैं करता हूँ तो मिट्टी का ढेला और ज्यादा बदसूरत सा दिखाई देने लगता है.
So what you produce comes out of your own mind.
तो जो भी आप बनाते हैं वो आपके मन के अंदर से आता है.
Well, all the time we're doing that to ourselves.
और सारे समय ये चीज हम खुद के साथ करते रहते हैं.
We are the clay for our own future.
तो हम जो है हमारे खुद के भविष्य की अभी मिट्टी है.
What we're doing now forms us.
तो हम अभी जो कर रहे हैं उससे हमारा निर्माण होता है.
So we're sitting here.
तो हम यहाँ बैठे हैं.
We've got certain state of mind.
और हमारे मन की कुछ इस वक्त स्थिति है.
We're in a certain situation.
और हम एक परिस्थिति में हैं.
And this is largely emerged out of our past experience, our past actions.
और ये जो स्थिति है हमारे भूतकाल के जो कुछ कृतियां हैं उसमें से ये निर्माण हुई है.
You've got yourself here because you decided to come.
आप यहाँ पर पहुँचे हो क्योंकि आपने यहाँ आना तय किया था.
But in a more subtle way, the very way in which you're looking at the world has been formed by your past actions.
लेकिन बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपका दुनिया की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो भी आपके भूतकाल के अनुभवों के ऊपर आधारित है.
Even what you see and the way it appears is formed to some extent out of your previous experience.
तो चीजें आपको जैसे दिखती है वो भी दिखना आपके गतकाल के अनुभवों में से आया हुआ है.
It's amazing how differently people can see the same situation.
तो बहुत ही आश्चर्य चीज है कि एक ही स्थिति को लोग कैसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं.
You can see this sometimes with artists.
तो जैसे कोई कलाकार होते हैं उनके संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं.
If you see a really good artist, it's clear that the world he sees is what he's depicting.
तो अगर आप बहुत ही अच्छे किसी कलाकार को देखते हो उसकी कृति को देखते हो तो आप देखते हो कि उसका दुनिया को देखने का क्या नजरिया है.
He's not making it up. He's trying to communicate to you what he sees.
तो वो कुछ वो ऐसे अपने मन से नहीं बनाता है तो वो आप तक ये चीज को पहुंचाना चाहता है कि वो क्या देख रहा है.
I don't know so much about Indian art.
तो भारतीय कला के बारे में मैं इतनी जानकारी नहीं रखता.
I don't know how much all of you know about Western art, European
art. और मुझे नहीं पता कि पाश्चिमात्य कला के बारे में आप लोग कितना जानते हैं.
But I had a very, very striking experience of this myself quite some years ago.
लेकिन इसका बहुत ही चौंकाने वाला एक अनुभव मुझे आया था.
I went to the Netherlands, Holland.
तो हॉलैंड में नीदरलैंड में गया था.
And it has a very great painting tradition.
और चित्रकला का बहुत ही अच्छी वहाँ की संस्कृति है.
And I went to their national museum.
और उनका जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ मैं गया.
And I looked at a particular painter's paintings from the 17th century.
और 17वीं शताब्दी के खास चित्रकार की मैं कलाकृति देख रहा था.
The name is Vermeer, if anybody is interested.
और अगर किसी को रुचि हो तो उनका नाम था वर्मियर.
And he paints very ordinary scenes.
और बहुत ही सर्वसाधारण ऐसे वो सीन बनाता है.
So for instance, there's one of a woman pouring milk from a jug.
तो जैसे कि एक औरत है और वो अपने बर्तन में से दूध गिरा रही है.
But he paints them with such a delicacy and stillness.
लेकिन वो इतनी नजाकत और शांति से उसको चित्रित करते हैं.
And it transforms that very simple action of pouring milk into something of deep beauty.
और बहुत ही साधारण सी कृति दूध को गिराने की उसको बहुत ही सुंदर कलाकृति में वो परिवर्तित कर.
And it's clear that's what he saw.
और ये बहुत ही स्पष्ट होता है कि उन्होंने ये देखा है.
His awareness was of that kind.
और उनकी जागृति उस प्रकार की थी.
And I remember coming out of that museum.
और मुझे याद है कि मैं उस संग्रहालय से बाहर आया था.
And everything had that same stillness and beauty.
और हर चीज में मुझे वही स्थिरता और सौंदर्य नजर आ रहा.
Because I'd engaged with his paintings, my own awareness changed.
क्योंकि मेरी जब आंखें उस चित्र के साथ संपर्क में आ गई थी, तो मैं भी उस जागृति के संपर्क में आ गया था.
I'd had the karma of appreciation, you could say.
और उसकी प्रशंसा करने का कर्म मैंने किया था.
That meant my own awareness matched his to some extent.
लेकिन उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि मेरी भी जागृति का स्तर उसकी जागृति के बराबर आ गया था.
So I'm talking at that level of fineness.
तो मैं उस प्रकार की सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ.
The world can look very different.
तो दुनिया बहुत ही अलग नजर आ सकती है.
You can experience this just from moods.
तो आपके जो मानसिक स्थितियाँ होती है, इसका आप अनुभव कर सकते
हैं. You know, if you're in a well, let's put it this way, a bad mood.
तो ऐसा इसको देखते हैं कि आपका जो मूड ठीक है ना, मूड बहुत खराब है.
You don't seem to have a word for mood, do you?
We use mood.
Okay, mood, yeah. It's obviously a very English. The English are very moody.
तो आपका मन की स्थिति बहुत खराब है.
But you know, you just find yourself in a certain state of mind, huh?
और आप खुद का एक मानसिक स्तर पे आप खुद को एक देखते हो, मन की एक अवस्था.
I think the English are moody because our weather is very moody.
तो English लोगों की मानसिक अवस्थाएं बदलते रहती है क्योंकि उनका वातावरण भी बदलते रहता है.
Some of my Indian friends, when they come to England, they say it can do anything here.
तो जब मेरे कुछ भारतीय लोग वहाँ आते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं.
In India, you get up and it's sunny.
भारत में आप उठते हैं और देखते हैं बहुत धूप है.
You go to bed and it's sunny.
और आप सोते हो फिर भी धूप होती है.
In England, you get up in the morning, it's raining, then there's a hailstorm, then there's thunder and lightning, then it's sunny, then it's cloudy. All in one day.
तो जब आप वहाँ पर उठते हो तो एक मोमेंट में बरसात आती है, कभी बर्फ पड़ता है, कभी धूप होती है, सब कुछ एक ही दिन में हो जाता है.
So we're like that too.
तो हम भी उसी तरह से होते हैं.
But yes, a mood is a whole sort of mental weather.
तो ये जो मूड या मन की अवस्था होती है, एक प्रकार से हमारे मन का वातावरण है.
Sometimes it's monsoon.
कभी बरसात होती है.
Sometimes it's summer.
कभी धूप काल होता है.
And so on.
और ऐसे ही.
And in each of those moods, the world looks very different.
और हर इस वातावरण में दुनिया अलग ही नजर आती है.
You know, if you're in a bad mood, you feel a bit depressed, a bit downhearted. You don't see things very clearly.
तो अगर आपका मन खराब है, मन की स्थिति, तो आपको सब निराश लगता है, बोझल लगता है, और आप उतना उत्साही महसूस नहीं करते.
I've noticed this with people who are clinically depressed.
तो ऐसे लोगों का मैंने अभ्यास किया है जो कि मानसिक स्तर पे वो निराश है.
A long time ago, I worked in the psychiatric field.
तो बहुत साल पहले मैंने मनोविज्ञान में काम किया था.
And I used to notice that people who were depressed just didn't notice things.
तो मैंने ऐसा देखा कि जब लोग निराश होते हैं तो उन्हें चीजें दिखती नहीं है.
They're sort of shut inside.
और वो अंदर से बंद हो जाते हैं.
So the world looks very different.
और उन्हें दुनिया अलग ही नजर आती है.
Or when people are very very happy, well they see the world in that way.
लेकिन लोग जब बहुत बहुत खुश होते हैं तो वो उसी तरह से दुनिया को देखते हैं.
You can see this with meditation too.
तो ध्यान के बारे में भी आप ये देख सकते हो.
Maybe even with the sessions we've had already, you'll see that the world seems a bit different afterwards.
और पहले के भी सत्रों का आपने अनुभव किया होगा कि आपको फिर दुनिया कुछ अलग सी लगती है.
If you manage to concentrate your mind, you'll experience a somewhat different world.
तो अगर आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हो तो आप एक अलग दुनिया का अनुभव ले सकते हो.
Of course, it's the same world, but you'll experience it differently.
तो ये वही दुनिया होती है लेकिन इसका अनुभव अलग होता है.
So the actions that we perform affect the way we see things, even at that level.
तो जो कृतियां हम करते हैं तो उसका हमारे
the actions that we perform affect the way we see the world even at that level.
तो जो कृतियां हम करते हैं तो हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं उस नजरिए के ऊपर उस स्तर पे उसका प्रभाव पड़ता है.
So all the time we're shaping our experience.
तो हर वक्त हम अपने अनुभवों को आकार दे रहे हैं.
And this is something that I'd like you to try to see the patterns of connection between action and experience.
तो ये जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें कि एक तरीके का पैटर्न रहता है कि क्या हम कृति करते हैं और कैसा उसका प्रभाव पड़ता है.
All the time we're shaping our own minds.
तो सारे समय हम अपने मन को एक आकार दे रहे हैं.
In Buddhism, we deconstruct this notion of mind.
तो बौद्ध धर्म में हम ये मन का जो कुछ संकल्पना है उसको हम तोड़ के वापस बनाते.
Because we talk about my mind does this, my mind does that.
क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है.
But actually, there's no such thing as mind.
लेकिन मन ऐसी कोई चीज होती ही नहीं
है. It's simply a succession of states of awareness.
क्योंकि जागृतियों के स्तर की एक श्रृंखला सिर्फ होती है.
And in effect, it's a different mind every moment.
और हर क्षण एक अलग मन उपस्थित होता है.
Our mind is renewed moment by moment.
और हर क्षण हमारा मन परिवर्तित होकर नया बनता है.
In ancient Buddhist psychology, which is called Abhidhamma, there's an analysis of this.
तो बहुत ही पुराने बौद्ध धर्म में जिसको अभिधर्मा कहते हैं उसमें इसका उल्लेख आता है.
In 2000 years ago, Buddhists began to analyze, based on the Buddha's teaching, the mind.
तो 2000 वर्ष पहले बौद्ध शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध लोगों ने मन क्या है इसकी खोज शुरू की.
And the description that's given for a mental state says that it lasts 1/16th of the snapping of a finger.
तो ऐसा कहते हैं कि एक मानसिक स्थिति जो है एक चुटकी बजाने का 16वां जो भाग है उतने ही समय तक कायम रहती है.
You go like that.
तो आप इस तरीके से जाते हैं.
And the state of mind lasts 1/16th of that time.
और इसमें जितना वक्त लगता है उसका 16वां भाग जो है उसी भाग तक आपकी मानसिक स्थिति बरकरार रहती है.
Well, that's just a way of saying it's infinitesimally small.
तो ये कहने की पद्धति होती है लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा वो समय है.
There's just a constant succession of mental states.
तो ऐसा होता है कि एक श्रृंखला होती है आपके मानसिक अवस्थाओं की.
To some extent, these come out of our physical existence.
तो कुछ हद तक हमारा जो शारीरिक अस्तित्व है उसमें से ही आता है.
But the direction and the shape that they take is substantially formed by our karma.
लेकिन ये किस दिशा में इसका प्रवास होगा इसका संपूर्ण आधार जो है वो हमारे कर्म होते हैं.
So in Buddhist theory we make a distinction between karma and karma vipaka.
इसलिए बौद्ध धर्म में हम कर्म और कर्म विपाक इसमें फर्क करते हैं.
Vipaka meaning result.
और विपाक का अर्थ होता है परिणाम.
Sometimes the word is used phala, fruit.
और कभी कभी फल.
So we have our actions and then its fruit.
तो हमारी कृति होती है और उसका परिणाम या फल होता है.
The fruit in terms of the basic shape of our mind.
और ये जो फल होता है जो हमारे मन का मूल आकार होता है.
So there's a sort of dialectic, action and reaction.
तो एक प्रकार से ये वर्तुलाकार होता है कि आपकी कृति होती है परिणाम होता है.
Kruti, parinam, kruti, parinam. And it just goes round and round like that.
और इस तरीके से गोल 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 ये चक्कर खाता है.
We make an action.
हम कृति करते हैं.
That forms our experience.
उससे हमारा अनुभव बनता है.
On the basis of that experience, we act.
और उस अनुभव के आधार पर हम कृति करते हैं.
That forms our experience again.
और उससे और हमारा अनुभव बनता है.
So what are the determiners of how that forms?
तो ये जो किस तरीके से बनता है इसका हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं?
It said that we must distinguish between those karmas, those actions of body, speech and mind that are skillful and those that are unskillful.
तो हमें एक फर्क करना आना चाहिए कि अपने काया वाचा मन की स्थिति की कौन सी कुशल है और कौन सी अकुशल है.
Skillful in the sense of producing greater excellence.
तो कुशल वो कि जिससे आप उच्चतम परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं.
Producing greater states of greater awareness, greater wisdom, greater compassion.
उच्चतर करुणा, उच्चतम प्रज्ञा और उच्चतम जागृति आप प्राप्त कर सकते हैं.
Unskillful states, well, go the opposite way.
और अकुशलता जो है इसके एकदम विपरीत दिशा में ले जाए.
They produce more selfishness.
उससे स्वार्थीपन आएगा.
More ignorance.
ज्यादा अविज्ञा आएगी.
And more hate. Even you could say just dislike.
और ज्यादा उससे द्वेष निर्माण होगा.
Or disconnection from others.
और दूसरों से अलगाव होगा.
Those are the two fundamental determiners.
तो ये दो मूलभूत हैं फर्क करने के आधार.
Yes, and the word that's used is skillful, kushala.
तो कुशल ये शब्द हम प्रयोग करते हैं.
Kaushalya in Sanskrit.
और संस्कृत में कौशल्य हम कहते हैं.
And I think in modern languages that still means skill, doesn't it?
लेकिन आधुनिक भाषाओं में स्किल का अर्थ होता है कि कौशल्य.
You know, like a carpenter's skill.
तो जैसे आपके पास एक बढ़ई का कौशल्य है.
Or a chapati maker's skill.
कि या चपाती बनाने का कौशल्य है.
If I'm an unskillful chapati maker, there's no doubt.
तो मैं बहुत ही कौशल्य नहीं है मुझमें चपाती बनाने का.
I'm sure a very good one.
No.
You know, it's the same in any other field.
और किसी भी क्षेत्र में ये सही है.
I do a bit of carpentry, for instance.
तो मैं कुछ बढ़ई का काम करता हूँ.
And if you do carpentry and you're trying to plane it flat.
तो अगर आप बढ़ई का काम कर रहे हो और आप किसी लकड़ी को एकदम चपटा आकार देना चाहते हो.
You have to work out which way the grain of the wood is running.
तो आपको ये देखना पड़ता है कि उस लकड़ी के जो कण है वो किस दिशा में जा रहे हैं.
If you go against the grain, you just make a mess.
अगर आप उन कणों के विपरीत दिशा में अपना काम कर रहे हो तो आप पूरा उसे बिगाड़ देते हो.
If you go with the grain, it goes nice and smooth.
लेकिन आप लकड़ी के कणों के ही आकार में अगर अपना काम करते हो तो बहुत ही स्मूथ चपटा सा ऐसा आप आकार बनाते हैं.
I'm sure in your own professions you can think of many, many examples.
और आपके खुद के क्षेत्र में ऐसे कई उदाहरणों के बारे में आप सोच सकते हो.
But yes, skill or unskill means skill or lack of skill means your ability to work with the grain of conditioning.
तो कौशल्य या कौशल्य का न होना यानी आपकी क्षमता कि आप किस तरीके से उन कणों के साथ कार्य कर पा रहे हैं.
If you act with an unskillful mind, if you act with hatred, you will get a reaction from conditions.
तो अगर आप द्वेष के साथ कार्य कर रहे हो तो परिस्थितियों पे निर्धारित आपको प्रतिसाद मिलेगा.
Inside, you will get that reaction.
आपके अंदर एक प्रकार की प्रतिक्रिया निर्माण होगी.
Your own mind will emerge in a less pleasant way.
और आपका खुद का मन जो है बहुत अधिक सुखद नहीं ऐसी परिस्थितियों में निर्माण होगा.
And of course you'll get a bad reaction from outside you too.
और बाहर की दुनिया से भी आपको कुछ अच्छी नहीं ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी.
If you act skillfully and you go through with the grain of things.
लेकिन अगर आप कुशलता से कार्य कर रहे हो और आप उन कणों के साथ जा रहे हो.
Then you get a very pleasant effect, at least eventually.
तो बहुत ही सुखद ऐसा आपको कुछ समय के बाद अनुभव आएगा.
So the art of excellence is working with the grain of karma.
तो ये जो उच्चतम स्थिति या कुशलता प्राप्त करने का जो प्रयास है वो उस कणों के साथ काम करने के साथ आधारित है.
I always feel this is the most important thing for people to know.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्व की बात है जो लोगों ने समझनी चाहिए.
And I always say it's the last thing people seem to get taught.
और ये सबसे आखिरी चीज है जो लोगों को सिखाई जाती है.
Morality is really a question of looking at the laws of life.
Marathi.
The morality. Marathi too, of course.
तो शीलाचरण जो है वो दुनिया को हम किस तरीके से देखते हैं उसका एक प्रश्न है.
Marathi is a question of looking at the laws of life.
The जीवन के नियमों को देखने का एक प्रश्न है.
That's of course what they say about Sanskrit, don't they? But that's another question.
संस्कृत के बारे में इस तरह से कहा जाता है, लेकिन ये अलग बात.
Anyway, back to my main theme. Yes, morality, ethics, is a question of working with the way life is.
तो शील या शीलाचरण जो है, जीवन किस तरीके से है उसके साथ कार्य करने की बात है.
It's not a question of obeying laws of God or whatever.
तो ये कुछ नियम जो है भगवान ने बनाए हैं उसका पालन करना ऐसा नहीं है.
It's not a question of commandments.
तो कुछ नियम आपको दिए गए हैं ऐसा नहीं है.
The religion I was brought up with, we were brought up with the Ten Commandments.
तो जिस धर्म में मैं बड़ा हुआ था तो हमारे पास 10 नियम थे.
And if you broke those commandments, God was angry with you.
तो अगर हमने इन नियमों को भंग कर दिया तो फिर भगवान हमारे से नाराज हो जाते थे.
And God had some pretty good punishments up his sleeve.
और फिर भगवान जो है इनको तोड़ने वालों के लिए कुछ शिक्षाएं निर्धारित करते थे.
He could make you burn for eternity.
तो वो अनंत काल तक आपको जलाते रहते थे.
Well, that was a great temptation to act badly.
और इस डर की वजह से मतलब बुरा काम ना करें ये हम सोचते रहते थे.
My experience was that the more I tried not to do what God wanted, the more I wanted to do it.
तो मेरा ऐसा अनुभव था कि मुझे जो जो बताया है कि भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना है तो मुझे वही सब करने की इच्छा होती.
Did I say that right? The more I tried to do what God wanted, the more I wanted not to do it. Yes.
और जितना मैं चाहता था कि भगवान मुझसे ये कराना चाहते हैं वो करने की कोशिश करता था, उतना ही वो ना करने की मुझे इच्छा होती.
But in Buddhism we say we're simply examining the way life works.
तो बौद्ध धर्म में हम ऐसा कहते हैं कि जीवन किस तरीके से कार्य करता है इसका हम सिर्फ संशोधन कर रहे हैं.
If you want to jump across a ditch, you have to, well, as it were, take into consideration the laws of gravity.
तो अगर कोई खड्डा या खाई है और उसके पार आपको कूदना है तो आपको गुरुत्वाकर्षण के नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा.
If you want to get from the seventh floor to the ground floor, you have to take into account the laws of gravity.
अगर आप सातवें माले से नीचे कूदना चाहते हैं तो भी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को आपको ध्यान में रखना होगा.
If you don't take those laws into account, you may come down at 32 feet per second from the seventh floor to the first to the ground.
और अगर आप इन नियमों को ध्यान में नहीं रखते तो ऐसा हो सकता है कि 32 से 32
feet per second.
इस गति से आप नीचे आते रहोगे.
So we take that into consideration. We go gently down a set of stairs.
और क्योंकि हम इसका ध्यान रखते हैं, इसलिए हम सीढ़ियों का उपयोग करते हैं.
So it's the same really with moral questions.
और यही सब जो है शीलों के बारे में भी सही है.
At least in the first place, the main thing is that if we want our own experience to improve.
क्योंकि शुरुआत में ही हमारे जो अनुभव है उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं.
Well, eventually something more emerges, but to begin with, we need to see our own advantage.
और कुछ समय के बाद कुछ और भी उसमें से निर्माण होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका हमें क्या फायदा होने वाला
है. So yes, we need to understand the law of karma.
तो कर्म के नियमों को हमें समझना पड़ता है.
We need to understand the relationship between our own mental states and the effect they produce in us.
तो हमारी खुद की मानसिक अवस्था है और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसे समझना.
And this obeys laws.
और ये सब नियमों पर आधारित होता है.
In the sense that there are regularities that govern that.
और एक प्रकार की कुछ नियमित ऐसी चीजें होती है जिसके ऊपर ये आधारित होते हैं.
So, yes, it seems to me this is one of the most important things for people to learn.
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो लोगों ने सीखनी चाहिए.
But it doesn't get taught.
लेकिन ये सिखाई नहीं जाती.
It's really the most important thing for children to learn, for instance.
और बच्चों के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है.
In a way, what a parent has to do is to try to communicate to children as they get more and more self-aware. Where their own best interests lie.
तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता ने ये करना चाहिए कि बच्चों के हित में क्या है ये बातें उन्हें धीरे धीरे समझानी चाहिए.
To see the relationship between mental states and experienced effect.
कि मानसिक स्थिति और उसके होने वाले परिणाम इसमें क्या संबंध है इसे देख पाना.
And a human being, to be a real human being, is to understand that relationship.
और एक मनुष्य का सही में मनुष्य होना ये है कि इस संबंध को पहचान पाना.
And this involves, first of all, taking full responsibility for oneself.
और इसका सबसे पहला काम ये होता है कि हम खुद की पूरी जिम्मेदारी उठाते.
Becoming fully aware of one's own being.
और हमारे खुद के अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना.
Being aware of your body.
हमारे शरीर के प्रति जागरूक होना.
Being aware of your feelings.
हमारी भावनाओं के प्रति जागरूक होना.
Being aware of your thoughts.
हमारे विचारों के प्रति जागरूक होना.
And being aware of your intentions.
और हमारे उद्देश्यों के प्रति जागरूक होना.
That's the first thing one needs to do.
और ये पहली चीजें होती हैं जो हम करने की आवश्यकता होती है.
In a way, you could say that's what we're doing with the meditation that we practiced this morning.
तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यही हमने किया जब हम सवेरे का ध्यान कर रहे थे.
The Anapanasati is about becoming fully aware of yourself.
तो अनापानसति मतलब यही होता है कि खुद के बारे में पूरी जागृति प्राप्त.
This is what we call mindfulness.
और इसे ही हम जागृति का सराव कहते हैं.
Being aware of what's going on.
तो जागृति इस बात की कि क्या चल रहा है.
And taking responsibility for it.
और जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उठाना.
Not trying to escape it.
उससे भागना नहीं.
You know, so often people won't admit when they've made a mess.
तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों के हाथ से कुछ बिगड़ जाता है गलती हो जाती है वो उसे मानते नहीं है.
What they'll usually do is blame somebody else.
और वो क्या करते हैं कि दूसरों को उसके लिए दोष देते हैं.
Or excuse themselves.
और या ऐसा मेरे से क्यों हुआ इसके बारे में बताते हैं.
Well, my favorite example which I give again and again is the Marathi expression, what's it? Lateness happened to me. Lateness happened to me.
तो एक मराठी बात है जो मैं बताता हूँ क्या हम ऐसा कहते हैं उशीर झाला.
उशीर झाला. She didn't even know it.
मला माहित नव्हतं. मुझे पता नहीं था.
You know, people will come in half an hour late and they'll just say, मुझे
उशीर झाला. तो लोग आधा घंटा देर से आते और बोलते देर हो गई.
It wasn't their fault, it was lateness's fault.
तो ये उनकी गलती नहीं थी वो उस समय की गलती थी.
It took me a long time to work out what was going on in India.
तो क्या हो रहा है ये मुझे बहुत समय तक समझ ही नहीं आ रहा था.
उशीर झाला
देर हो गई.
Not my fault, lateness.
तो मेरी गलती नहीं है समय की गलती.
But the fact is, you were late.
लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आप देर से आए.
So it's a failure to take responsibility, even in your language.
तो ये जो हम बात करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते.
Don't worry, in English we've got our own ways of escaping responsibility too.
तो अंग्रेजी भाषा में भी हमारे अपने तरीके हैं जिससे हम अपनी जिम्मेदारी टाल देते हैं.
Or you say something like, they forced me.
और जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने ये मुझसे करवाया.
As if you were helpless, huh?
जैसे कि आप बहुत ही असमर्थ थे.
In fact, sometimes people will say, I was helpless.
तो जैसे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही असमर्थ हूँ.
You look them up and down. You got arms, you got legs, you can walk, you can speak.
तो आप उनको ऊपर से नीचे देखते हो हाथ है पैर है आप बोल पा रहे हो.
But we don't take proper responsibility for our own actions.
लेकिन फिर भी हम अपने कृतियों की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाते.
And that's the beginning of excellence.
और वो जो है उच्चतमता की जो है शुरुआत होती है.
You will not attain excellence unless you take responsibility for yourself.
तो उच्चतमता आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप खुद की जिम्मेदारी नहीं उठाते.
Because everything you do will be determined by other forces.
क्योंकि जो भी आप फिर करते हो कोई दूसरी ताकत जो है उसको नियंत्रित करती है.
You won't be able to activate karma.
और आप खुद के कर्म को शुरू नहीं कर सकते.
You won't therefore develop a better mind.
और एक अच्छा मन निर्माण करने की दिशा में आप शुरुआत नहीं कर पाते.
So our course in excellence begins with mindfulness.
तो हमारा ये जो उच्चतमता का जो प्रशिक्षण है begins with
mindfulness.
जागृति के साथ शुरुआत होता है.
It begins with taking full responsibility for oneself.
इस बात के साथ शुरू होता है कि हम खुद की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले रहे हैं.
Saying yes, I was wrong.
और ये कहना कि हाँ मैं गलत था.
Yes, I failed.
हाँ मैं फेल हो गया, नापास.
If you don't accept what you've done wrong, what you've failed at, you won't improve.
तो अगर आप इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि आप किस चीज में फेल हो गए, तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते.
You must know this from your professional lives.
तो आपके जो व्यावसायिक अनुभव है, जीवन है, उसमें से आप इसको समझ सकते हैं.
You must have colleagues, even employees, who just will not take proper responsibility.
तो आपके सहयोगी हो गए जो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से नहीं उठाते.
They never accept, yeah, I did that wrong.
और वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझसे ये गलत हुआ है.
I find if somebody will say I did that wrong, I can go with them, I can work with them.
तो अगर कोई मुझे ऐसा मिलता है जो कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो मैं आगे बढ़ के उसकी मदद करता हूँ, कार्य करता हूँ.
We can work out what went wrong and how to do it better.
और फिर हम कार्य कर सकते हैं कि कहाँ गलती हो गई और कहाँ अच्छे से सुधार हो सकता है.
So we need to take full responsibility for ourselves.
और इसलिए हमने हमारी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए.
We need to recognize we're in this mental state because of what we've done.
और हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि हम इस मानसिक अवस्था में हैं क्योंकि हमने कुछ किया है.
If we've acted harshly, there will be a coarsening of our own minds.
और अगर हमने बहुत ही कठोरता से व्यवहार किया है, तो हमारे मन में भी एक तरह से वो कठोरता होगी.
If we've acted meanly, we'll become more contracted.
और अगर हमने बहुत ही स्वार्थ से कुछ कार्य किया है, तो हम बहुत ही ऐसे बंद या जकड़े हुए होंगे.
If we act ignorantly, we'll be in the dark.
और हमने बहुत ही अज्ञानता से कुछ कार्य किया है, तो हम बहुत अंधकार में होंगे.
If we have maitri, if we have love for others, we'll feel closer to everything.
और अगर हमारे मन में दूसरों के लिए मैत्री या प्रेम होगा, तो हम दूसरों के बहुत करीब महसूस करते हैं.
If we're generous, we'll feel a closer connection.
और अगर हम बहुत दातृत्व दानी हैं, तो भी हम बहुत ही दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं.
We feel some freedom, inner freedom.
और हम एक तरह से अंदर से एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं.
If we act with awareness, we'll feel greater satisfaction.
और अगर हम जागृति के साथ कार्य करते हैं, तो एक संतोष हम महसूस करते हैं.
So it's this taking full possession of ourselves.
तो ये एक तरह से खुद का पूरी तरह से नियंत्रण लेना है.
This is where excellence begins.
और यहाँ से उच्चतमता की शुरुआत होती है.
It's what we call integration or mindfulness.
और इसको ही हम एकात्मता, अखंडता या जागृति कहते हैं.
And this is where our course begins.
और यहाँ से हमारा प्रशिक्षण शुरू होता है.
Even in the Qigong, you're trying to become more aware of your body.
और चीकुंग करते हुए भी हम अपने शरीर के प्रति अधिक जागृति निर्माण करते हैं.
I don't know whether any of you experienced that.
तो मुझे नहीं पता कि आपको इसका अनुभव आया या नहीं.
In the Anapanasati, you're trying to let your mind settle down so that you can experience it fully.
तो अनापानसति में आप अपने मन को स्थिर होने देते हैं, ताकि आप मन का पूरी तरह से अनुभव ले सकें.
In this talk, I'm trying to point you to seeing the patterns in your own mind.
तो इस प्रवचन में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन विभिन्न जो है परिस्थितियों को देख पाओ.
So that you can be more aware of what's going on.
ताकि आप इस बारे में ज्यादा जागरूक हो सको कि क्या चल रहा है.
This is the first step in developing excellence.
और उच्चतमता हासिल करने का ये जो है वो पहला कदम है.
And it's indispensable step.
और ये ऐसा कदम है कि जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते.
Without this step, your development will be at best partial.
और ये अगर कदम आप नहीं उठाते हो, तो आपकी जो प्रगति है वो अधूरी है.
You may be able to develop your intellect, but emotionally you'll be a dwarf.
आपकी बुद्धि जो है वो आप विकसित कर पाओगे, लेकिन आपकी जो भावनिक स्थिति है उसमें आप बहुत उसमें आपकी बढ़ोतरी नहीं.
It's very common, isn't it? You get people who are very, very clever, but emotionally like children.
तो ये बहुत ही सामान्य है कि आप देखते हो कि लोग बौद्धिक स्तर पे बहुत ही विकसित हैं, लेकिन भावनिक स्तर पे एकदम बच्चों जैसे हैं.
So yes, we need to become aware of ourselves in a full and rounded way.
तो हमें खुद के बारे में संपूर्ण तरीके से जागृति निर्माण करनी है.
So I hope that takes us a little further in understanding excellence.
तो मुझे लगता है कि उच्चतमता क्या है ये समझने में हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं.
And what I'm really asking you to look at is these patterns of conditioning.
तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप ये जो एक पैटर्न या परिस्थितियों का जाल है इसकी तरफ आप देखो.
See what affects the way you experience things.
तो आप इस तरीके से देखो कि किस प्रकार से आप चीजों का अनुभव करते
हैं. And especially see how karma affects you.
और खास करके इस बात की तरफ देखो कि कर्म का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है.
See how your actions in the past have formed your experience now.
और इस बात को देखो कि आपकी भूतकाल की जो कुछ कृतियां हैं उससे अभी आपके वर्तमान के अनुभव बने हुए.
And see how your actions now affect your experience later.
और देखिए कि इस वक्त की गई कृतियां आपके भविष्य के अनुभवों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी.
I hope you'll get quite a strong experience of this during these days.
और मुझे लगता है कि आने वाले इन दिनों में बहुत ही अच्छा आपको इसका एक अनुभव मिलेगा.
So now it's over to you.
तो अब ये आपके ऊपर है.
I'm sure that many issues have been raised that you'll want to discuss.
तो मुझे लगता है शायद आपके मन में बहुत चीजें आई होगी जिस को आपको बातचीत करनी होगी.
And I think what's your name? Jivak is going to set you up for some discussion.
और मुझे लगता है कि जीवक आपको शायद कुछ चर्चा करने के लिए बताएंगे.
And in the afternoon I'll be happy to answer questions on all of this.
और दोपहर में आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसका उत्तर देने में मुझे खुशी होगी.
Well, you may disagree with me.
तो जरूरी नहीं कि आप मेरे से सहमत हो.
You may not think that what I've said matches your experience.
तो जो मैंने कहा वैसे ही आपका अनुभव हो ऐसा भी नहीं.
Well, I'd like to discuss that.
और अगर ऐसा है तो मैं बातचीत करना चाहूंगा इस बारे में.
So thank you very much. That'll be all for now.
तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए इतना काफी.
Thank you very much, Patrick.